जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
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 जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
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 ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भोजन अर्पित करते हैं और उनके नाना प्रकार से सेवा करते हैं। फिर अद्वैत आचार्य शाम के समय में स्वयं 3 प्रहर के लिए कीर्तन शुरू करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के साथ हरिदास ठाकुर मुकुंद आदि नित्यानंद प्रभु सब नृत्य करने लगते हैं और अद्वैत आचार्य कहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद जो माधव हैं अब मेरे मंदिर में आए हैं घर में आए हैं और मुझे बहुत अधिक आनंद हो रहा है। तो जब इस प्रकार से अद्वैत आचार्य नृत्य कर रहे थे और इस भावना को प्रकट कर रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कीर्तन को सुनते सुनते उनके हृदय में भी कृष्ण के लिए दिव्य उन्माद जागृत हो उठा और जैसे कृष्ण के लिए बहुत अधिक प्रेम उनके हृदय में जाग उठा तो वो मूर्छित होके गिर पड़ते हैं और महाप्रभु मूर्छित होके गिरते ही जो उनके संगी थे बेस्ट कीर्तनिया उनका नाम था मुकुंद तो महाप्रभु का वो मूर्छित अवस्था देख के मुकुंद विशेष पद को गाते हैं जिसमें कहा गया है हा हा प्राण सखी कीना है लमोरे कि हे मेरे मित्र प्राण सखी कि क्या क्या नहीं मेरे साथ घटित हुआ कि कृष्ण के लिए कृष्ण को उनसे मैंने प्रेम किया जिसके कारण प्रेम रूपी जो विष है मेरा जो शरीर है वो जल रहा है और दिन रात मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं तो वहां जाना चाहती हूँ एक पंछी के समान उड़ के जाना चाहती हूँ कहाँ जहाँ कृष्ण है। तो इस प्रकार के भावों को व्यक्त कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि बल्कि वो बहुत अधिक थके हुए थे 3 दिन के उपवास के बाद अभी महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं लेकिन इस नृत्य में उनको श्रम महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेमावेश में है। तो नित्यानंद प्रभु जब इस चीज को देखते हैं कि बहुत थके होंगे, हाँ, तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, तबुत न जाने श्रम प्रेमाविष्ट हया नित्यानंद महाप्रभु के राखिल धरिया। तो महाप्रभु को तो कोई सुध बुध नहीं थी, तो नित्यानंद प्रभु उनके नृत्य को बंद करते हैं। आचार्य गोसाई तबे राखिल कीर्तन नाना सेवा करी प्रभु के करायल शयन। तो जो आचार्य गोसाई हैं, अद्वैत आचार्य हैं, वो सस्पेंड करते हैं, महाप्रभु के कीर्तन को बंद करते हैं और स्वयं ही कई प्रकार की सेवाएं चैतन्य महाप्रभु को वो करते हैं और उनको सुलाते हैं, उनका मसाज आदि करते हैं। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य पूरा जो महाप्रभु की सेवा का एक प्रकार से लाभ उठा रहे हैं। यही मत दश दिन भोजन कीर्तन एक रूपे करी करे प्रभु रसेवन। तो यही मत दश दिन, तो चैतन्य महाप्रभु 10 दिन के लिए अद्वैत आचार्य के घर रहे, 10 दिन अद्वैत आचार्य के यहाँ रहे और उनका जो सेवा का भावना कैसे था अद्वैत आचार्य का, कृष्णदास कहते एक रूपे, इसको कहते 1 पॉइंट अटेंशन, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा में है। तो एक रूपे करे करे प्रभु रस सेवन, बिल्कुल एक है कुरुनंदन, जिसकी बात हमने पहले भी की है कि सेवा में बिल्कुल वो फिक्स थे 10 दिन के लिए, एक प्रकार से वो फिक्स थे चैतन्य महाप्रभु के सेवा कार्य में, चैतन्य महाप्रभु को आनंद प्रदान करने के लिए। ऐसे नहीं कि अभी 10 दिन हो गए क्या करना है, परेशान हो गया हूं। हमारे साथ ऐसे होता है क्योंकि हम किसी चीज से फैमिलियर हो जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड लॉस होने लगता है, अटेंशन लॉस होने लगता है, इम्पोर्टेंस उसका हम लॉस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, नॉर्मल जो भावना है वो हमारे हृदय में होती है। हाँ, तो लेकिन अद्वैत आचार्य के पास चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे 10 दिन, तो लेकिन फिर भी जो सेवा का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा था, सेवा की जो भावना है वो कम नहीं हो रही थी। तो अद्वैत आचार्य बिल्कुल एक रूपे सेवा कर रहे थे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ये सिखाते हैं, प्रभाते आचार्य रत्न दोलाया चढ़ाया भक्त गण संगे आयला शची माता लैया। तो अभी जो चंद्रशेखर आचार्य थे जिनको नवदीप भेजा गया था, तो वो पालकी के ऊपर जो सची माता है उनको बिठा कर ले आते हैं और केवल अकेले सची माता नहीं, नवदीप के महाप्रभु के जितने सारे पार्षद थे, जितने सारे संगी थे, उनको जो अद्वैत चंद्रशेखर आचार्य हैं वो ले आते हैं। क्योंकि नवदीप में क्या था कि जैसे ही निमाय पंडित अपने शुरुआत के दिनों में बहुत बड़े स्कॉलर के रूप में थे, हर कोई डरता था, लेकिन जब भक्त बने तो नवदीप के उनके भक्तों का एक नियम था, सुबह उठते ही सारे लोग सबसे पहले महाप्रभु को देखने जाते थे। लेकिन जब संन्यास लिया चले गए तो उस दिन भी सुबह गए तो देखा क्या उन्होंने कि सची माता केवल एक स्टैचू के समान ऐसे बैठी है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तब सब लोगों का हृदय ऐसे फट जाता है, वो सोचते कि हाँ शायद हमारे जो गौरांग देव है वो किसी और जगह उन्होंने प्रस्थान किया है। तो ये उनका नियम था और इतना आसक्ति था गौरांग महाप्रभु के लिए। क्या करते थे वो, श्रीनिवास श्रीवास पंडित के घर में सदा नाम संकीर्तन करते थे, भगवत चर्चा आदि करते थे, हरि नाम निकालते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु के प्रति उन सबका बहुत गहरा अटैचमेंट था। चैतन्य महाप्रभु उनके प्राण थे नवदीप के भक्तों के, और महाप्रभु निकल गए तो ऐसे हो रहा था कि जैसे शरीर से आत्मा चली जाए। तो ऐसे उनके भक्तों का इतना गहरा आसक्ति था, तो उन सारे भक्तों को लेकर जो चंद्रशेखर आचार्य हैं सची माता के साथ शांतिपुर आते हैं नदिया नगरेर लोक स्त्री बालक वृद्ध सब लोक आयला हैला संघट समृद्ध। तो नदिया से नदिया नगर जो नदिया जो सिटी है शहर है वहां से हजारों लोग आ रहे थे और उनमें छोटे बच्चे थे स्त्रियां थी वृद्ध लोग थे सब लोग आ रहे थे और जो भीड़ है महाप्रभु को मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए वो भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। शांतिपुर में प्रात कृत्य करी करे नाम संकीर्तन सची माता लैया आयला अद्वैत भवन। तो यह दिया है महाप्रभु सुबह उठ के क्या करते थे सबसे पहले तो कहते प्रात कृत्य करी करे नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही सुबह उठते थे तो अपने जो बॉडीली एक्टिविटीज हैं नेचर कॉल आदि हम करते हैं नित्य कर्म जिसे कहते उठना स्नान करना बाकी सब चीजें वो करके चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे करे नाम संकीर्तन अपना जप माला लेकर कुछ घंटे तक जप किया करते थे। तो ये नियम था चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु माला में जप किया करते थे ऐसे नहीं कि महाप्रभु तो केवल नाचते या गाते होंगे नाम जप नहीं करते होंगे। जब साउथ इंडिया यात्रा के लिए चैतन्य महाप्रभु निकले तो उस समय भी नित्यानंद प्रभु कहते आप अकेले कैसे अपना बिड बैग कैसे पकड़ोगे मतलब माला कैसे पकड़ोगे उसको गिनोगे कैसे नाम को अपने पास अपना वो कमंडलू भी होगा पानी का आपके एक दो वस्त्र भी होंगे तो आप अकेले मत जाओ आप क्या करो मुझे साथ ले चलो। नित्यानंद प्रभु कहते नहीं नहीं मैं अपने बहुत किसी जो प्रिय किसी को ले जाऊंगा तो दूसरा कहेगा कि मुझे नहीं ले गए तो आप सब चूज करके एक भक्त को दे दो तो कृष्णदास को उनके साथ देते। तो महाप्रभु जब जाते थे तो ऑन द वे वो अपना चांट करते थे और एक गांठ लगाते थे एक माला के बाद एक वस्त्र को इस प्रकार से वह हरिनाम लेते थे सुबह उठकर और कहा वर्णन आता है कि वह तुलसी के आगे बैठ के जप किया करते थे। कभी कभी उनको चलना पड़ता था तो एक भक्त आगे तुलसी लेके चलता था और महाप्रभु आराम से गोल गोल जप करते थे। इस प्रकार से प्रातः कृत्य करे करे नाम संकीर्तन। तो जो जीवन की शुरुआत है सुबह की शुरुआत है वो भी नाम संकीर्तन से होनी चाहिए और दिन का जो मध्य है वो भी नाम संकीर्तन से होना चाहिए और दिन का जो एंड है वो भी नाम संकीर्तन से होना चाहिए। नाम बिना किछु नाहिक आर 14 भुवन माझे। जो ये त्रिभुवन है ये कितने भुवन है भूर भुव स्वाहा ये तीन भुवन है तो इन तीन भुवनों में प्राधान्य या कोई चीज है तो वो नाम है नाम बिना किछु नाहिक। तो ये आइडियल चीज है कि नाम संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु देने आए। तो कई भक्तों को मैं जानता हूँ तो कई भक्त ना रोज सोने से पहले एक या दो माला जप करते हैं और फिर सोते हैं और बहुत इफेक्टिव है मैंने देखा। तो इस प्रकार से नाम जो अभिन्न अंग है आध्यात्मिक जीवन का सबसे कोई क्लोज हमारा मित्र है तो वो होली नेम है। आचार्य गण कहते हैं सचे आगे पड़िला प्रभु दंडवत हैया कांदिते लागिला सचे कोले उठाइया। तो अभी इनका ब्रह्मचारी लाइफ जो सन्यासी लाइफ का हरी बोल हो गए। As soon as the mother Sachi appeared on the scene, Chaitanya Mahaprabhu fell before her like a stick. Mother Sachi began to cry, talking the Lord on her lap, taking. तो जैसे ही सची माता आ गई तो सची माता साक्षात यशोदा देवी है तो सची माता पड़ेला प्रभु दंडवत आया। तो सची माता अपनी माता को देखते ही चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया दंडवत किया। तो ये सची माता भी भगवान के महान भक्त हैं। तो इस प्रकार से कोई भक्त बन जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को वो ये करे निंदा आदि करना शुरू करे कटु वचन बोले वो उचित नहीं है तो वो भक्त का एक व्यवहार नहीं है। मैं भी उनको अज्ञान है वो कई बार नहीं जानते भक्ति में भक्ति के महत्व को तो लेकिन जो भक्त है उसको तो बुद्धिमानी से अपने माता पिता से उचित व्यवहार करना चाहिए। सच्चे आगे पड़ेला महाप्रभु ने जैसे देखा तो भूमि में पड़े, क्योंकि जो भक्त बनता है तो उसका रिस्पेक्ट सबके और बढ़ता है, चाहे नॉर्मल व्यक्ति की ओर। जैसे प्रभुपाद थे तो देखा कई जो ज्वाइन किए थे उनके भक्त, तो जब वो कभी माता पिता से मिलते थे या घर से आते थे तो उनके माता पिता जब प्रभुपाद को मिलते थे कहते कि हमारे बच्चे में बड़ा बदलाव आया है, हाँ हमारे साथ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करता है, घर के कई कार्य खुद ही करता है। तो इस प्रकार से एक विशेष जो आदर है वो प्रकट होता है माता पिता के प्रति या और सारे जगत के लोगों के प्रति। तो सच्ची आगे पड़ेला महाप्रभु ने अपनी माँ को देखा, वैसे ही सच्ची माता को दंडवत किया। ये पहला समय था संन्यास लेने के बाद, सैफरन पहनने के बाद पहली बार वो मिले थे, क्योंकि घर से उन्होंने छोड़ के भाग गए थे। कांदिते लागेला सची कोले उठाया, और सची माता जो माता है उसको पुत्र बहुत अधिक प्रिय होता है, और जो पिता है उसको अपनी डॉटर बहुत अधिक प्रिय होती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब सची माता ने देखा कि ये क्या है, ये कौन से रूप में है मेरा पुत्र, क्योंकि वो तो जब घर छोड़े थे तो लंबे लंबे बाल थे, पैंट शर्ट के साथ थे, जैसे देखते ना कोई भक्त ज्वाइन करता है तो भाग के तो पैंट शर्ट आदि है और आते ही दूसरे रूप में प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही सची माता ने देखा तो सची माता क्रंदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, और जैसे छोटे बालक को अपने गोद में लेते हैं उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपने गोद में उठाया। दोहर दर्शने दुए हाइला विवाल, केशना देखिया सची हाइला विकल। तो सची माता ने सबसे पहले यही चीज देखी और एजिटेशन हो गया उनको, क्या कि केशना देखिला, दोहर दर्शने दुए हाइला विवाल, एक दूसरों को देखकर जो दोनों हैं बहुत अधिक ये हो गए, एक प्रकार से दुखी हो गए या आनंदित हो गए देखकर, और केश ना देखिया, लेकिन सची माता ने क्या देखा, कई केश नहीं देखे, हाँ इतने लंबे लंबे सुनहरे बाल थे, केश ना देखिया के बालों को नहीं देखा, तो बहुत अधिक दुखी हो गई। अंग मुछे मुख चुंबे करे निरीक्षण, देखिते ना पाय अश्रु भरी लनयन। तो जैसे एक गाय है अपने बछड़े को जब नजदीक आता है, बहुत जैसे गाय चराने के लिए जाती है दिन भर, और बछड़ा जब बांधा हुआ होता है तो जब आती है दौड़ के गाय अपने उसमें स्थान में गोष्ठ में, सबसे पहले बच्चे के पास जाती है, उसको चाटती है, कई सारे प्रकार से उसके साथ ये करती है। तो उसी प्रकार से ये जो वात्सल्य का जो भाव है, वात्सल्य की जो भावना है सची माता प्रकट कर रही है, हाँ क्योंकि निमाई उनको प्राण से अधिक प्रिय है, क्योंकि जब उनके पुत्र विश्वरूप जो थे, पहले पुत्र जो विश्वरूप, उन्होंने जब पता चला कि उनका मैरिज का डिस्कशन चल रहा है घर में तो वह तुरंत छोड़ के चले गए, तो पिता ने देखा कि अरे ये क्यों चला गया घर छोड़ के संन्यास लेके, क्योंकि बहुत पुस्तकें पढ़ता था, तो कहते ये यही कारण है, ग्रंथ पढ़ने का कारण क्या है, भौतिक जीवन से विरक्ति। तो फिर निमाई पंडित देखा कि मेरा छोटा बेटा भी बचपन से ही बहुत पढ़ने में बहुत रुचि ले रहा है, तो सची माता को कहा इसका पढ़ाई बंद करो, स्कूल मत भेजो, ये स्कूल जाएगा या पढ़ते रहेगा तो ये भी सन्यासी हो सकता है, इसको नहीं। तो फिर जब वो सन्यासी हो गए तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई थे अपने माता पिता को कहते नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगा हमेशा, बचपन में कहते थे। लेकिन एक दिन जो जगन्नाथ मिश्र थे उन्होंने एक सपना देखा था, और वो सपने में क्या देखा था कि ये जो निमाई पंडित है उन्होंने संन्यास ले लिया है और अद्वैत आचार्य भक्तों के साथ जोर जोर से हरि बोल का कीर्तन कर रहे हैं, सारे भक्त नाच रहे हैं और शिवास पंडित के घर में हरिनाम हो रहा है। ये जगन्नाथ मिश्र ने सपना देखा था जब ये थोड़े से बड़े हो गए थे, तो उन्होंने ये चिंता व्यक्त की और चिल्लाने लगे नारायण नारायण। तो सची माता ने पूछा सुबह सुबह क्या हो गया आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे, क्योंकि मैंने ऐसा सपना देखा। और चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित थे बचपन में, उन्होंने भी सपना देखा था, क्या कि उनके जो भाई है विश्वंबर, वो उनको कह रहे तुम भी चलो संन्यास लो, हाँ सैफ्रॉन में उनको भी ले गए सब सपने में। तो निमाय पंडित अपने माता को ये चीजें बताते थे। तो जब पहली बार संन्यास के बाद मिल रहे हैं तो सची माता उनके अंग को चुंबन कर रही है, मुख को निहार रही है अलग अलग प्रकार से। देखे तेना पाया श्रु भरी लनयन, और जो नेत्र है इतने अधिक आंसुओं से भर गए थे कि चैतन्य महाप्रभु को देख नहीं पा रहे थे। तो नेत्रों का ये फल है कि भगवान को देखना। कांदिया कहे न सची बाछा रे निमाय, विश्व रूप समना करिह निठुराय। कि हे बाछा, बाछार मीन्स माय डार्लिंग, मेरे प्रिय है ना, हे मेरे प्रिय गौर हरी, हाँ तुम ऐसा रो रही है, सची माता जोर जोर से क्रंदन कर रही है, हाँ कि तुम ऐसा इतना क्रूर क्यों हो, क्रूर मत बनो, किसके जैसा क्रूर मत बनो, तुम्हारे जो बड़े भाई विश्वरूप के जैसा। सन्यासी है या पुनः नादिल दर्शन, तुम्हें तैछे कैले मोर हई बेमरन। और उसने सन्यास ले लिया और मुझे दर्शन नहीं दिया फिर से, और तुमने भी सन्यास लिया है और तुम क्या हुआ है, मेरा एक प्रकार से मरण ही हो गया है, ये मेरे लिए मृत्यु है। तुम इस प्रकार से निठुराई मत करो, इस प्रकार से क्रूर मत बनो। कांदिया बले न प्रभु सुन मोर आई, तुम्हारा शरीर ये मोर किछु नाही। महाप्रभु कह रहे हैं अभी, क्या कह रहे कि हे मेरे आई, आई का मतलब है माँ, हे मेरी माँ। महाप्रभु भी रोने लगे, दोनों रो रहे हैं। एक्चुअली एक जगह आता है आगे चल के आएगा जिसमें लिखते हैं प्रभुपाद कि जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको कैसे ये करना चाहिए, सहन करना चाहिए। एक बार कृष्ण की ओर मुड़ते हैं तो पीछे का जो आसक्ति है वो ना देखे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो हृदय में वो अटैचमेंट बना रहेगा। कांदिया बले न प्रभु सुन मोर आई, अभी महाप्रभु अपने माँ को देख रहे हैं, सन्यासी को तो बिल्कुल वो होना चाहिए, बिल्कुल है कि नहीं, नहीं क्यों रो मैं माँ के लिए क्यों रो। तो महाप्रभु लेकिन रो रहे हैं, तुम्हारा शरीर है यही मोर किच्छु नहीं। क्या कह रहे कि ये जो शरीर है ये आपका है, और वास्तव में इसलिए हर कोई ऋणी है, इस ऋण को नहीं हम अदा कर पाते इसलिए हमें अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं। और ऋण क्या है, यही ऋण है कि गुरु के प्रति है, माता पिता के प्रति है, साधु के प्रति है, जनरल पब्लिक के प्रति है, ये सब ऋण है। और माता पिता के प्रति विशेष क्यों, क्योंकि ये जो शरीर है ह्यूमन बॉडी वो उनके द्वारा हमें मिला गया है, इसलिए उनके प्रति विशेष ऋण है। तो महाप्रभु कहते हैं ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर किसका है, ये मेरे मेरे मालिक का नहीं, मेरे क्या कहेंगे, मेरा नहीं है ये शरीर, ये मेरा, ये शरीर तो आपका ही है। सची माता को कह रहे हैं तुम्हारा पालित देह जन्म तो महते कोटि जन्मे तुम्हारा ऋण ना पारिशो देते। हाँ वही बात बोले कि ये तुमने इसको बड़ा किया है। और वैसे देखा जाए माता पिता का बहुत बड़ा ऋण है हर एक व्यक्ति पर, क्योंकि जो बच्चा है जो व्यक्ति हो भूल जाता है, वो माता पिता का ध्यान नहीं रखता, कैसे कि क्योंकि इतना कष्ट उठाते हैं वो बचपन से। क्या कष्ट उठाते हैं, नाना प्रकार के उनके लिए टेंशन है, जन्म लेने से पहले ही माता पिता को टेंशन होता है। जो हस्बैंड है उसकी पत्नी गर्भवती होती है तभी उसको टेंशन रहता है, अरे बच्चा जन्म लेगा उसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, मतलब बच्ची होगी तो उसके लिए भी तो मैरिज का, मतलब टेंशन का लाइफ शुरू है। मैरिज होते ही 2 दिन आनंद है, उसके बाद क्या है, टेंशन है, भार भार कहा गया है इसको, सर के ऊपर आप क्या करना है, एक्स्ट्रा लोड कैरी करके चल रहे हो। यदि आप बहुत स्ट्रांग हो तो कृष्ण का स्मरण कर सकते हो, और इस लोड को आप कैरी करके जा रहे हो तो बड़ा टफ है। तो जन्म मतलब पत्नी गर्भवती है तो चिंता शुरू होती है जीवन की, दूसरे दिन चिंताओं की शुरुआत हो जाती है मैरिज के बाद। और क्या चिंता, यही सुत मित्र रमणी, सुत पुत्र आदि की, संबंधियों की, स्त्री की। हाँ, क्योंकि मैरिज हो गया तो देखा घर में अरे कई चीजें नहीं है, स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसको दिन रात मेहनत करनी होती है, धन अर्जन करना होता है, समाज के जैसे घर आदि होना चाहिए, नया नया कार आ रहा है उसको चेंज करते रहना चाहिए, कितना मतलब स्टेटस को बनाए रखने के लिए उसको वृथा परिश्रम करी, वृथा ही परिश्रम कर रहा है। और उतना परिश्रम सिंसियरली कृष्ण के लिए करेगा व्यक्ति तो क्यों नहीं, कृष्ण को प्राप्त करना बहुत सरल है, मतलब परिश्रम इतना आवश्यक नहीं है। भौतिक जीवन को मेंटेन करना बहुत परिश्रममय जीवन है। हाँ, तो माता पिता अपने सुख की परवाह न करते बच्चों को क्या देते हैं, सुख देते हैं, फीडिंग करते हैं, बचपन से उनको इतना कष्ट होता है, विलेज आदि में देखा है कि कितना टफ लाइफ है बच्चों को, सिटी लाइफ में भी देखो क्या जीवन है, बच्चों को स्कूल ले जाओ, छोड़ के छोड़ो, फिर लाओ, घर के भी काम करो, ये करो, कितना ये है। वो बीमार हो गए, उन्होंने पेशाब कर दिया, उनका टॉयलेट हो गया, तने कितना टफ है। बच्चे होते तो बड़े होते तो नाना प्रकार की बीमारियां हैं, उनको केयर करो। तो इस प्रकार से माता पिता बहुत अधिक ये करते हैं। तुम्हारा पालित देह जन्म तोमा है ते, कोटि जन्मे तुम्हारा ऋण ना पारिशोधित, तो कोटि जन्म लेते रहेंगे तभी भी माता पिता का ऋण व्यक्ति चुका नहीं सकता, तो फिर क्या फायदा कोटि जन्म लेकर। तो हमें कोटि जन्म नहीं लेने हैं, एक ही जन्म लेना है, और उसमें भी ऐसी सेवा करनी है कि उनका ऋण क्या हो जाना चाहिए, चुकना चाहिए। जब मैं फुल टाइम बनने की सोच रहा था तो एक चीज मेरे दिमाग में बहुत थी, अरे पाप लगेगा, क्योंकि कृष्णा बुक पढ़ा था कई महीने से पहले, कृष्ण कहते एक चैप्टर में कि माता पिता का सेवा जो नहीं करता वो नरक जाता है। हमने पढ़ा ना कृष्णा बुक में देवकी वगैरह, उस कनेक्शन में कृष्ण बोलते हैं। तो मैंने सोचा ये तो डेंजर है, हाँ क्या डिसीजन लू नहीं लू। तो मैं भगवद गीता को ये किया, तो भगवद गीता में एक श्लोक मिला परपट में, जिसमें प्रभु भगवान कहते गतो मुकुंद परिहर्त्य कृतम, कि मुकुंद की शरण लेने मात्र से ये जो सबका ऋण है वो एक जन्म में चुका सकते हो। तो क्योंकि हर एक का ऋण चुकाना है तो आपको हर जीवन में अलग अलग आश्रम में रहना पड़ेगा। माता पिता का ऋण चुकाना है तो आपको गृहस्थ बनना पड़ेगा, ये निश्चित है। क्या कैसे ऋण चुकाना है, तो माता पिता का जनरली ऋण चुकाना होता है व्यक्ति को, तो उसको आगे संतति निर्माण करनी पड़ेगी, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, वंश को चलाना होगा, जिससे ये पिंडदान आदि की क्रिया जो भगवान गीता अर्जुन कोट कर रहे हैं वो चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए। तो उस प्रकार से वो कहते हैं ऋण मादा करेगा, लेकिन बाकी ऋण है। साधु का ऋण आपके ऊपर क्या है कि ब्रह्मचारी होके साधु को सर्व करना होगा, एक साधु का ऋण चुकाना है। देवताओं का ऋण है, देवताओं का ऋण चुकाना मीन्स क्या करना पड़ेगा, यज्ञ आदि करने पड़ेंगे, उनको कई चीजें देनी पड़ेगी। जनरल लोगों का है, कई चीजों का ऋण है। जिनसे भी हम सर सेवा स्वीकार कर रहे हैं उन सबका हमारे ऊपर ऋण होता है और वह हमें चुकाना ही पड़ता है निश्चित रूप से। तो लेकिन फिर क्या ऐसी चीज है जो एक चीज करने मात्र से सबके ऋण से हम मुक्त हो सकते, नहीं तो पुनः जन्म लेना पड़ता है उस ऋण को अदा करने के लिए। तो तुम्हारा पालित देह जन्म तोमा है थे, कोटि जन्मे तुम्हारा ऋण ना पारिशोधित है। तो कहते महाप्रभु सिंसियरली गिड़गिड़ा रहे कि हे मदर, मैं करोड़ों जन्म भी लूंगा तो आपका जो ऋण है मैं नहीं चुका सकता, तो फिर क्या फायदा करोड़ों जन्म लेके सेवा करने से। बेस्ट बेस्ट वे क्या है, भक्त बनो, भक्त बनो, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज भक्त बने, शुद्ध भक्त। तो जब मृत्यु आए उनको ये करने के लिए, हाँ चलिए, अभी हर एक को तो शरीर ये करना पड़ेगा ना, मृत्यु आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मृत्यु के सर पे पाव रखा और वो विमान में जो पुष्पक विमान आया था आध्यात्मिक जगत से उसमें चढ़े। हाँ तो लेकिन तुरंत उनके हृदय में एक डिजायर आई, अरे मेरी मदर। तो कहते विष्णु लोक, विष्णु दूतास कहते नहीं, देखो देखो वहां देखो, दूसरे एक विमान में उनका मदर भी आध्यात्मिक जगत में जा रहा है। तो शास्त्र में कहते हैं कि पुत्र का मतलब है जो पुत नामक नरद से तारण करता है उसको पुत्र कहते हैं, क्योंकि पुत्र और जो मूत्र है उनका जन्म एक ही स्थान से होता है श्री के। हाँ तो फिर यदि वो पुत्र अपने माता पिता को भगवान के धाम ले जाना ले नहीं जाता, ये उसका ड्यूटी है, ये असली कर्तव्य, ये असली ऋण है जो अदा कर सकता है, तो वो पुत्र शास्त्र कहते हैं मूत्र के समान है। ये बहुत गहरा स्टेटमेंट वर्णन करते हैं शास्त्र में। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि आपका ये शरीर है और आपने मुझे पालन आदि किया है और आपके बिना तो जन्म नहीं, क्योंकि हमें जन्म, क्योंकि वीर्य में तो एक एक जीव नहीं होता, वीर्य में कितने जीव होते हैं, हजारों जीव होते हैं, जिनमें से एक जीव को कर्म के अनुसार वो बॉडी मिलता है और वो बॉडी को क्रिएट करते हैं, पालन पोषण करते हैं। इसमें पेट में वो कौन है, माता है। तो माता का ऋण वास्तव में बहुत अधिक है माता पिता का। तो उनके लिए बेस्ट सेवा क्या है कि जो पुत्र है उसका कर्तव्य है कि कैसे मैं शुद्ध भक्ति करो जिसके द्वारा माता पिता को ये मिलेगा परमानेंट बेनिफिट। हिरण्यकश्यप ने अपने पिता की सेवा कैसे की, उनका मर्डर करवा के, बेस्ट सेवा है कि नहीं। ये सेवा कोई कह रही कैसे, ये क्या सेवा है क्या। जब रशिया में या अमेरिका में शायद वो कोर्ट केस था, तो उसमें जो जज आदि निरंजन महाराज वगैरह एक दो हफ्ते वो कोर्ट के चला था कंटिन्यू डेली, तो कोर्ट में जाना पड़ता था उनको, कटहरे में खड़ा होके बोलना पड़ता था कि ये मिस्टर निरंजन है जो लोगों को बहका रहे हैं और ये पूजा ये आदि करते हैं, ये कोई भगवान। तो एक एक वकील ने क्या किया, कहते कि आपके कैसे भगवान है, तो वो उन्होंने फोटो दिखाया, नरसिम्हा देव का फोटो, दिस इज योर गॉड। हाँ कहते ये आपका भगवान है, ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो एक आसुर का पेट फाड़ रहे हैं। तो वो कहते निरंजन महाराज कि उन्होंने पूछा कि इसका नाम क्या है। हाँ तो उन्होंने कहा लॉर्ड नरसिम्हा देव। तो क्या हुआ था, किसी एक माता जी को प्रिच किया था, वे प्रिच होते हैं सारे लोग तो भक्त बन जाते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान हो गए थे अपने घर की वो माता जी से जो पूरा भक्ति में लगी थी, तो ऐसे कुछ कारण हो गए थे जो केस किया इस्कॉन डिवोटीज के ऊपर। तो महाराज तो मुखिया थे, लीडर थे, तो इनको जेल में जाना पड़ता था कंटिन्यू 15 दिन या 2 हफ्ते और डेली सुनावनी होती थी। हाँ जिनमें इनको खड़ा किया और ये शुरू हो गया, ये कौन है जो लड़का खड़ा है। हाँ कहते महाराज ने, प्रहलाद महाराज। कहते मुझे भागवतम का लेक्चर देना पड़ा कि क्या वार, उन्होंने गले में क्या डाला है वो नरसिम्हा देव ने। कहते ये आपके भगवान है। तो काफी चीजें हुई और फिर इनको कई मिलियन डॉलर्स का वो पड़ा, क्या कहते हैं, दंड देना देने के लिए कहा। तो इन्होंने क्या किया, फिर हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट में ये किया, अपील किया। तो वहां के जो शायद लॉस एंजेलिस या कहाँ का कोर्ट था, जहां उन्होंने कहा कि या तो ये रिलीजियस चीजों के लिए हम, उन्होंने डिसअपीयर कर दिया उस केस को, ही बंद कर दिया कि इस केस को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, ये रिलीजियस मैटर है, उनको पूरा अधिकार है प्रीचिंग करने का। ये फ्री है रिलीजन के लिए, फ्री सबकी चॉइस है। तो महाराज कहते हुए अमेजिंग था कि उस समय वो कोर्ट में वो नरसिम्हा देव और प्रहलाद महाराज आदि के बारे में उनको सुनाने का और सुनने का मौका मिला। तो इस प्रकार से प्रहलाद ने सर्व कैसे किया, पिता की हत्या करके। तो कहेगा कि यार ये कैसी सेवा है माता पिता की। हाँ लेकिन क्या असली सेवा की उन्होंने, सारी चीजें हुई। तो प्रहलाद ने पूछा, तो ये फादर, ए लॉर्ड नरसिम्हादेव, मेरा पिताजी जो भी है लेकिन आप उसको कुछ ये करिए बेनिडिक्शन, आपके चरणों का आश्रय दिया। हाँ मैंने उसको आश्रय दिया है, भगवान ने कहा इतना ही नहीं प्रहलाद, तुम्हारे कितने पीढ़ियों का वर्णन आया है, इतनी पीढ़ियों का मैंने ये किया है, तो ये पीढ़ियों का भी आता है, अलग अलग कैटेगरीज के डिवोटीज के अनुसार इतनी पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो ये वास्तव में ये सेवा है, इसलिए कहते पिता न शिष्यात जननी न शिष्यात, माता पिता का यह अधिकार है, मैं भी वो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस में है, अज्ञान में है, तो जो पुत्र है उसका अधिकार क्या है, इस प्रकार से सर्व करें कि भक्त बन के उनको भक्ति देना, ये उसका कर्तव्य है। तो महाप्रभु कोटि जन्मे तुम्हारा ऋण ना पारिशोधित है, करोड़ जन्म का मैं आपका ये ऋण नहीं चुका सकता, जानी वा ना जानी कैल यद्यपि संन्यास तथापि तुम्हारे कबू नहीं बहुदास, जानी वा ना जानी, मैंने जाने अनजाने में इसको ज्वाइन किया है महाप्रभु कह रहे यद्यपि संन्यास, मैंने जाने अनजाने में क्या कर लिया है, बहकावे में आके, हाँ वो बेस के भक्तों के बहकावे में आके ज्वाइन कर लिया, हाँ जो यूथ प्रीचिंग चल रहा था किसी कॉलेज में, ऐसा होता है ना कई बार, तो जाने वाना जाने कहला यद्यपि संन्यास, हे माता मैंने जाने या अनजाने में क्या कर लिया है, संन्यास स्वीकार किया है, तथापि तुम्हारे कबू नहीं पो उदास, प्लीज आप क्या मत हो, उदास मत हो। तो महाप्रभु अपनी माता को कहते हैं तुम्हें जहा कह आमे तहा ही रहिब, तुम्हें जई आज्ञा कर सही तो करीब, हाँ तुम्हें जहा कह, आप जहा कहोगे मैं वहां रहने के लिए तैयार हूं, और आप जो आज्ञा देगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं, तो हमें इस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ तो हमारे बेटा जप मत करो, हम माता को कहते कि नहीं माता आप बताओ जो भी आप कहोगी मैं वो करूंगा, बेटा तुम बस इधर ही रह जाओ, ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है घर में आश्रम तो लेकिन महाप्रभु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माता भी उस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भरी पूरी है, सची माता ऐसे नॉर्मल माता नहीं है, सची माता भगवान की मदर है और वो सारे आध्यात्मिकता के सार को जानती है। तो वो महाप्रभु कहते आप जो कहोगे वही मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं वही रहूंगा जहाँ आप कह रहे, आपकी बस आज्ञा चाहिए। ए तवले पुनः पुनः करे नमस्कार, तुष्ट हैया आई कोले करे बार बार, इस प्रकार से पुनः पुनः महाप्रभु सची माता को प्रणाम कर रहे थे, तुष्ट हैया आई कोले करे बार बार, तो तुष्ट होकर जो सची माता है चैतन्य महाप्रभु को अपने गोद में ले रही थी। तबे आई लया आचार्य गेला अभ्यंतर, भक्तगण मिलते प्रभु हैला सत्वर, तो अभी पूरा टीम आया था नवदीप से, हजारों हजारों भक्त आए थे, तो सबसे पहले किसे मिले, मदर सची को मिले, उनको अद्वैत आचार्य घर में ले गए, और फिर अभी सारे असंख्य भक्त जो महाप्रभु को देखने के लिए लालायित हो रहे थे, और महाप्रभु को देखने लगे हाँ क्विकली बहुत जल्दी, एके एके मिलेला प्रभु सब भक्तगण, सबार मुख देखी करे दृढ़ आलिंगन, तो महाप्रभु एक एक भक्त को मिले और इंडिविजुअली उन्होंने क्या किया, सबको आलिंगन किया, इतने सारे उनके भक्तगण थे और इतना प्रेम चैतन्य महाप्रभु के लिए था, और महाप्रभु का प्रेम भी अपने भक्तों के लिए बहुत अधिक था। केशना देखिया भक्त यद्यपि पाय दुख, सौंदर्य देखिते तबु पाय महासुख, केशना देखिया, सब महाप्रभु के बाल बहुत आकर्षक थे, जब सन्यास लीला हम कभी लेंगे वो सन्यास लीला तो अमेजिंग पास्ट टाइम है। तो केशना देखिया भक्त पाय महादुख, केश नहीं देखने के कारण भक्तों को बहुत अधिक दुख हो रहा था, लेकिन एक चीज का सुख था, क्या सुख था, सौंदर्य बढ़ गया था, ये भगवान की विशेषता है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं है कि उनके बाल हो या ना हो, हमारा डिपेंड होता है सौंदर्य हर चीज के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसे नहीं है, उनके बाल हो तो सौंदर्य है, नहीं भी है तो और भी बढ़ रहा है, तो उनके भक्तों को महाप्रभु को इस रूप में इस चीज में देख के उनको बहुत अधिक आनंद हो रहा था। उन भक्तों का नाम वर्णन करते हैं, श्रीवास रामाय विद्या निधि गदाधर, गंगादास वक्रेश्वर मुरारी शुक्लंबर, बुद्धिमंत खान नंदन श्रीधर विजय, वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय कत नाम लय बजत नव द्वीप वासी सबारे मिले ल प्रभु कृपा दृष्टि आसे। तो इतने कितने नाम लो, हाँ कौन कह रहे हैं, कृष्णदास कवेरा, कितने नाम, श्रीवास राम, हर इन भक्तों के नाम आप जप करते रहिए। मेरा तो कहना है, मैं एक बुक पढ़ रहा था जो महाप्रभु के एक एसोसिएट ने लिखा है, जिसका नाम था ओशन ऑफ होली नेम ऐसे कुछ। तो मुझे लगा हरि नाम के बारे में अभी पूरा क्या क्या पढ़ूंगा, नहीं कोई और मुझे याद नहीं, कुछ तो था समथिंग समुद्र, नामामृत समुद्र ऐसे ही नाम था शायद कुछ। तो मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया, पूरे बुक में केवल महाप्रभु के भक्तों के नाम ही नाम है, इतने नाम, कितने 10-20 अध्याय हैं केवल नाम, महाप्रभु के भक्तों के नाम, सनातन आदि, रूप आदि, रावण, रामाय, श्रीनिवास, पता नहीं कितने। तो कहते इन भक्तों का नाम उच्चारण करने मात्र से जो है हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होगा। तो वो भक्त ने लिखा था, तो बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे महाप्रभु के आशीर्वाद, बंगला में था, ऐसे थे प्यार सारे, नाम ही नाम, नाम ही नाम, अच्छा लग रहा था। तो जितने सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु मिल रहे थे, और नवदीप सबारे मिले प्रभु कृपा दृष्टि आसी, और सबको मिले और हंसते हुए अपना जो कृपा दृष्टि है उन सबके ऊपर डाला। आनंदे नाचाय सबे बलि हरि हरि आचार्य मंदिर हैल श्री वैकुंठपुरी। तो सब लोग आनंदे नाचे न सबे बोले हरि हरि, सब लोग हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे। और अभी उनका जो मंदिर है, आचार्य अद्वैत आचार्य का जो मंदिर है, घर है, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, वैकुंठपुरी, वैकुंठ में कन्वर्ट हो गया था। जत लोक आयल महाप्रभु के देखते नाना ग्राम है ते आर नव द्वीप है ते। केवल नवद्वीप से नहीं आए थे, नाना ग्राम अलग अलग गांवों से भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए उनके सारे भक्तगण आए थे, उनको केवल देखने के लिए। सबा कारे वासा दिल भक्ष अन्नपान बहु दिन आचार्य गोसाई कैल समाधान। तो अद्वैत आचार्य की सेवा भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, ऐसे नहीं कह रहे टेंशन कहां से भक्त लोग आ गए, कैसे इनको रहने का अरेंज इंतजाम करूं, कैसे इनको प्रसाद का अरेंज करूं, नहीं, अद्वैत आचार्य और आनंद अनुभव कर रहे थे। हाँ, सभा कार्य वासा दिला, वासा क्या है, निवास स्थान, भक्ष अन्नपान वंडरफुल प्रसाद, बहु दिन आचार्य, एक दिन के गेस्ट नहीं थे ये सारे, जब तक महाप्रभु रुकेंगे तब तक ये सब रुकने वाले थे, और महा ये सारा करके उनको समाधान अनुभव हो रहा था। भक्तों का सर्व करके, सर्व करने से ज्यादा आनंद मिलता है, प्रसाद सर्व करने में हम देखते हैं, दूसरों को सर्व करने से बहुत एक इटर्नल अंतरंग जो आनंद है वो प्राप्त होता है भक्तों को खिलाने से। प्रभुपाद कहते थे, एक उनके ग्वाड ब्रदर थे विशाखापट्टनम में, प्रभुपाद जब उनके भक्तों को ले गए विशाखापट्टनम या फिर मायापुर,
विशाखापट्टनम,
तो वह ऐसे थे वो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य, उनको भक्तों को सर्व करने में इतना आनंद आता था, उन्होंने खुद कुक किया प्रभुपाद और उनकी पार्टी को। और इतना ही नहीं, जब सर्विस का समय आया तो उन्होंने क्या किया, खुद सर्व कर रहे थे, और उनका आनंद, उनका उत्साह बढ़ते जा रहा था। अरे अरे मैंने अभी कुकिंग किया, ठीक है सर, आप लोग करो सर्विंग, मैं प्रसाद पाता नहीं। प्रभुपाद कहते दिस इज द वैष्णव, प्रभुपाद ने ऐसे उनके लिए कहा अपने डिसाइपल को, यह है वैष्णव, प्रभुपाद कहते। इस प्रकार से जो अद्वैत आचार्य है वो बहुत अधिक भक्तों को सर्व करने से आनंद का अनुभव कर रहे थे। आचार्य गोसाई र भंडार अक्षय अव्यय जत द्रव्य व्यय करे तत द्रव्य है। तो अक्षय पात्र था उनके पास, अक्षय अव्यय, क्षय नहीं था, सारा धन आदि संपदा द्रव्य जितने भक्तों की सेवा में लगते थे उतना ही अधिक बढ़ जाता था, ये चीज है। क्योंकि लक्ष्मी प्रयास करती है, सर्व करना चाहती है भक्त के घर में, इसलिए जब सुदामा के वहां तो भगवान ने कितना ऐश्वर्य दिया कि लक्ष्मी को स्वयं वहां रहना पड़ा। महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम महाराज, उनके वहां हाँ उनकी वाइफ कुकिंग नहीं करते थे, स्वयं रुक्मिणी देवी कुक करते थे और लॉर्ड विठला पानी भरते थे उनके घर में, पानी भरने का काम करते थे कृष्ण, द्वारका के कृष्ण, लॉर्ड विठला मीन्स द्वारका के कृष्ण। तो इस प्रकार से लक्ष्मी आदि भी वो किसमें आनंद लेती है, भक्तों को सर्व करने में, क्यों, क्योंकि भगवान खुद सर्व कर रहे हैं। वो चेस्ट वुमन है, पतिव्रता स्त्री है, ऐसे नहीं कोई बैठी रहेगी, वो अपने इसको फॉलो करती है, किसको, पति को, ये पतिव्रता का तरीका है। तो इसी प्रकार से कहा है कि वो पतिव्रता शिष्य होना चाहिए, चेस्ट डिसाइपल, जो अपने आध्यात्मिक गुरु को क्या करे, फॉलो करे, अनु अनु। तो से दिन है ते सची करे न रंधन, भक्त गण लैया प्रभु करे न भोजन। तो सची माता तब से क्या किया, रंधन का काम अपने हाथ में लिया, कुकिंग का, और भक्तगण सारे ले महाप्रभु के संग में प्रसाद लेते थे। दिने आचार्य प्रीति प्रभुर दर्शन, रात्रे लोक देखे प्रभुर नर्तन कीर्तन। तो जो दिन के समय में अद्वैत आचार्य के साथ प्रेम पूर्ण वार्तालाप आदि होता था और महाप्रभु का दर्शन करते थे सब लोग, और रात्रि में क्या करते थे, नर्तन कीर्तन, कीर्तन नहीं उसके साथ साथ नर्तन, दोनों चीजें होती थी। कीर्तन करते प्रभु सर्व भावोदय, स्तंभ कंप पुलकाश्रु गदगद प्रलय। तो जो हमने पढ़ा है वो हेल्प होता है बीच बीच में, हाँ अभी पता चलता है कि हाँ कुछ तो है। कीर्तन करते प्रभु, सारे भावों का उदय हो जाता था, नाना प्रकार के जो भाव हैं, हमारे लिए तो छिली भाव है। लोकनाथ महाराज एक क्लास में कहते थे कि हमारे पास तो भाव है ही नहीं, आंखों से तो आंसू नहीं आ रहे और रोमांच नहीं हो रहा है और शरीर गदगद नहीं हो रहा है, नाचने की इच्छा नहीं हो रही है। तो देखते कि सहजिया है, वो लोग क्या करते हैं, या तो कई लोग होते हैं जैसे विदेशों में होता था, स्टे हाई फॉरएवर, कैसे स्टे हाई फॉरएवर होता था उनका, गांजा पी के या गांजा फूक के या फिर एलएसडी आदि लेके वो पूरा ऊपर की चेतना में रहते थे, फिर नीचे गिरते थे, फिर एक डोस लगाते थे। तो ये नहीं, और इंडिया में क्या है, चिली खाएंगे, मतलब क्या खाएंगे, मिर्च खाएंगे, मिर्च खाते इतना खाएंगे कि आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगती है, शरीर ऐसे होने लगता है। तो महाराज कह रहे थे चिली भाव, ये जो चिली भाव है आजकल, क्षणे क्षणे पड़े प्रभु आछाड़ खाइया, देखी सची माता कहे रोदन करिया। महाप्रभु क्षण क्षण में गिर रहे थे और सची माता देख देख के रो रही थी। चूर्ण है लहे न वासो निमाई कलेवर, हाहा करे विष्णु पाशे मागे वही वर। तो वो देखती थी कि बहुत दुख होता था जब महाप्रभु ऐसे नहीं गिरते थे, मतलब हाथ टेक के गिर गए, हम बैठना है तो हाथ में सीधा ऐसे गिर जाते थे धड़ाम, और नीचे तो पत्थर आदि कंकड़ जो भी चीजें हैं वो महाप्रभु के शरीर में लगते थे, और वो एक एक प्रार्थना करते थे, विष्णु से वर मांगते थे। बाल्यकाल है ते तोमार जे कैलु सेवन, तार यही फल मोरे देह नारायण। हे नारायण, मुझे एक ही फल चाहिए, किस चीज का, बाल्यकाल से लेकर अभी तक मैंने जो जो आपकी सेवा की है उसका एक फल दे दो। क्या, जे काले निमाई पड़े धरनी ऊपरे, व्यथा जेन नाही लागे निमाई शरीरे। और जब ये निमाई नर्तन आदि करते हुए पृथ्वी में गिरता है तो एक वर दे दो कि उनके शरीर में कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। यही मत सची देवी वात्सल्य विवल, हर्ष भय दैन्य भावे हई लविकल। तो ये जो है बीच बीच में ये सब विभाव आदि भाव प्रकट होते हैं वात्सल्य प्रेम के कारण, सची माता इस प्रकार से विवल हो जाती थी। श्रीवासादि जत प्रभुर विप्र भक्त गण, प्रभु के भिक्षा दीते है ल सबा कारमान। तो जो श्रीवासादि नवदीप से आए भक्त थे उनका इच्छा था कि हम भी उनको भिक्षा दे खिलाए भोजन आदि। सुनि सची सभा कार्य करे लमिनती, निमाई र दर्शन आर मुई पाक कति। तो सची माता ने कहा कि ये प्रपोजल जब उनसे सुना तो सची माता भक्तों को कहती है कि मुझे कितना बार ये मौका मिलेगा निमाय का दर्शन और उनको भोजन खिलाने का। तो मासवासने हबे अन्यत्र मिलन मुई अभागी निरमात्र यही दर्शन। और आप सबका मिलन तो अलग अलग स्थानों में चैतन्य महाप्रभु से हो सकता है, लेकिन मैं अभागिन हूँ, मैं कहाँ उनको मिल सकती हूँ। जावत आचार्य ग्रहे निमाय रावस्तान मुये भिक्षा दिमु सभा कारे मागो दान। मैं यही दान मांगती हूँ आप सबसे कि जब तक अद्वैत आचार्य के यहाँ निमाई का निवास है तब तक मैं उनको जो फूड है अन्न उनके लिए बनाऊंगी या सप्लाई करूंगी। सुनि भक्त गण कहे करी नमस्कार माता रजे इच्छा से सम्मत सबार। तो माता का ये जो वचन सुन के सब लोग उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हाँ आप ही करो। माता रव्यग्रता देखी प्रभु रव्यग्रमान भक्त गण एकत्र करी बलिला वचन। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की इस ईगरनेस को देखा और तो उन्होंने सारे भक्तों को बुलाया और उन्होंने एक बात कही। हाँ क्या बात कही? तोमा सबार आज्ञा विना चलीला वृंदावन जायते नारिल विघ्न कैल निवर्तन। कि आप सबकी आज्ञा के बिना मैं वृंदावन के लिए निकला और वृंदावन के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं जा नहीं पाया वृंदावन, कोई एक विघ्न के कारण मैं वापस आ गया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आगे उन सबको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। और फिर किस प्रकार से सच्ची माता उनको कहती है कि हाँ आपको कहाँ निवास करना चाहिए, क्यों निवास करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस रीडिंग को हम कल कंटिन्यू करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आप सब भक्तों की कृपा नहीं हुई जिसके कारण मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया। इसलिए वृंदावन जाने के लिए किसकी कृपा आवश्यक है? हाँ, वृंदावन जाने का मतलब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाना, दोनों चीजें हैं, भौम वृंदावन भी और नित्य वृंदावन। आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण की ओर वापस जाने के लिए भक्तों की कृपा नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन में स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बनते रहेंगे, गतिरोधक कहते हैं ना, स्पीड ब्रेकर वो बनते रहते। और स्पीड ब्रेकर से सोचेंगे नहीं मुझे इसका कोई ध्यान नहीं है, मैं जंप लगाऊंगा फास्ट, जाके आप एक कोने में बैठे रहेंगे फिर पूरे आध्यात्मिक जीवन में आपका स्पीड ब्रेक होके किसी कोने में रहेगा। एक बार राधा गोविंद महाराज बस से आ रहे थे वृंदावन से, तो बहुत लेट हो रहे थे, उन्होंने कहा ड्राइवर को थोड़ा तेज चलाए, सही में तेज चलाए तो एक स्पीड ब्रेकर आया और सही में गाड़ी जंप की और एक जगह जाके हो गई गाड़ी, हाँ बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी उसके बाद। तो महाराज कहते तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या वास्तव में स्पीड ब्रेकर क्या चीज है। तो वैसे ही स्पीड ब्रेक हो जाता है आध्यात्मिक जीवन में भी, जीवन में जब हम भक्तों की कृपा से वंचित हो जाते हैं। तो महाप्रभु ये चीज को कहते हैं कि मैंने आप सबका परमिशन नहीं लिया, आपका कृपा आशीर्वाद नहीं लिया और मैं गया, भाग के गया वृंदावन जाने के लिए। हाँ तो लेकिन कृष्ण ने मुझे वापस भेज दिया कई सारे समस्याएं प्रदान करके, विघ्न कैल निवर्तन, विघ्न दिया। इस प्रकार से ये पास टाइम कंटिन्यू करेंगे कल। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य देव की, श्रील प्रभुपाद की, निदाय निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।